ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये ओजस्वी पंक्तियां हमारे देश के उस व्यक्तित्व की हैं जिसने कई दशकों तक भारतीय राजनीति को अपने ओजस्वी विचारों, अपने तेजस्वी नेतृत्व और अपने एक विचारशील व्यक्तित्व से बहुत बड़ा उपहार दिया। देश को सशक्त बनाने में प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देश के विकास में एक विकास पुरुष की तरह वो आए और भारतीय राजनीति में एक युग पुरुष की तरह वो चमके। हम आज बात कर रहे हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिनकी आज 100वीं जयंती हम मना रहे हैं। और इस अवसर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में दो विशेषज्ञ शामिल हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा राजनीतिक विश्लेषक और अटल जी के 6 वर्षों तक मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन जी का। आपका स्वागत है।
नमस्कार।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है।
धन्यवाद।
तो अशोक जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जो सन 1957 के लोकसभा चुनावों में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकसभा सीट के लिए जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में चुनकर आते हैं, दशकों तक राजनीति में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश आज उन्हें एक युग पुरुष के तौर पर याद कर रहा है। आपकी पहली टिप्पणी।
आपने जैसे कहा, अटल जी 1957 में यानी दूसरी लोकसभा में पहली बार चुनकर आए थे और उनके पहले ही भाषण, जिसको हम मेडन स्पीच पार्लियामेंट में कहते हैं, वो इतनी प्रभावशाली थी कि उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके सीट पर जाकर उनकी पीठ थपथपाई थी। इतना प्रभावशाली भाषण था। इतना ही नहीं कि उसी दौरान किसी एक विदेशी मेहमान को स्वागत जब प्रधानमंत्री नेहरू कर रहे थे तो वहां पर जैसे सांसदों से मिलवाया जाता है, तो अटल जी से मिलवाते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि ये नौजवान कभी आगे चलकर इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। आप सोचिए, 57 से 62 का जो पीरियड था जिसमें दूसरी लोकसभा के वो सदस्य थे, उनके सारे भाषण इतने प्रभावशाली रहते थे। तो संसदीय प्रणाली, लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को मजबूत करने में जो अटल जी का योगदान था, मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ी एक श्रद्धांजलि है आज जो हम उनको स्वयं जन्मदिन पर दे रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में उस समय के जितने भी धुरंधर नेता, राजनेता सभी दलों में रहते थे और एक से एक बढ़कर सांसद उस समय लोकसभा में होते थे, वहां पर एक अपनी छाप छोड़ी, पहचान बनाई। और फिर लगातार अटल जी 11 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए विभिन्न स्थानों से, 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही अटल जी, जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया युग पुरुष, जिसको हम अंग्रेजी में लेजेंड कहते हैं, वो उस स्थान को प्राप्त कर चुके थे। प्रधानमंत्री काल की चर्चा अगर हम बाद में करें तो मुझे लगता है कि उनको अगर हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उनको हम याद करें तो समग्रता में करें, क्योंकि उनका जो जीवन था, जिस तरह से वो पत्रकार के नाते उन्होंने शुरू किया, कई समाचार पत्रों का संपादन किया, कवि हृदय थे, उन्होंने अपनी 51 कविताएं लिखी और ये सब 51 कविताएं प्रधानमंत्री बनने से पहले ही लिख चुके थे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अटल जी के व्यक्तित्व को अगर समझना है तो प्रधानमंत्री काल और प्रधानमंत्री काल से पहले दो खंडों में उनको अगर हम उनका अध्ययन करेंगे तो हम समझ सकेंगे कि कितना ही एक अद्भुत व्यक्तित्व था अटल जी का।
बिल्कुल रवि जी, जैसा कि अभी अशोक जी ने चर्चा की कि अटल जी के व्यक्तित्व को हमें समग्रता में देखना होगा, क्योंकि उनका विविध व्यक्तित्व है एक राजनीतिक के रहते हुए और तमाम तरह के उनके आयाम हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल एक लेख लिखा है उनके व्यक्तित्व पर श्रद्धांजलि स्वरूप। तो आप कैसे उनके व्यक्तित्व पर पहले टिप्पणी देना चाहेंगे, जैसा कि अशोक जी ने कई पहलुओं पर चर्चा की कि उनके व्यक्तित्व को हमें कई भागों में बांटकर देखना होगा।
देखिए, अशोक जी ने बिल्कुल सही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को समग्रता से देखना चाहिए। वे कवि थे, साहित्यकार थे, संपादक थे, संपादक यानी पत्रकार के तौर पर उन्होंने पांचजन्य, वीर अर्जुन, राष्ट्रधर्म और दैनिक स्वदेश का संपादन किया। एक राजनेता के तौर पर, जैसा कि अशोक जी ने कहा कि विपक्ष में रहे हों या फिर प्रधानमंत्री बने हों, कुशल दृष्टा, भविष्य दृष्टा, प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता, स्वप्नदर्शी, सर्वग्राही, विकास पुरुष के तौर पर उन्हें देखा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ये भी मानना है कि आज भारत दुनिया के शक्ति संतुलन में जो निर्णायक भूमिका निभा रहा है, उसकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही रखी गई थी। बहुत से ऐसे कदम उनके शासनकाल में उन्होंने उठाए जो देश की राजनीति में पहली बार जमीनी स्तर पर जिन्हें हकीकत में उतारा गया था।
जी अशोक जी, हम भारतीय लोकतंत्र में उनके योगदान पर अगर अब धीरे धीरे आना चाहें तो हम उस दौर को बड़ी गर्व के साथ याद करते हैं, जिसका प्रधानमंत्री ने भी अपने लेख में जिक्र किया है कि अटल जी जब विदेश मंत्री थे तो उस दौरान विश्व में भारत की छवि को एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने में उनका बड़ा योगदान था। और एक चर्चा बहुत होती है उस समय की, संयुक्त राष्ट्र में जब वो पहुंचे तो उन्होंने हिंदी में भाषण दिया।
अध्यक्ष महोदय, हम विश्व शांति के, ऐसी विश्व शांति के जो जीवंत है, प्रबल समर्थक हैं। विश्व शांति हमारे सारे प्रयत्नों की आधारशिला है। शांति की परिभाषा केवल युद्ध न होना मात्र नहीं है। विश्व शांति का ताना बाना किसी भी समय छिन्न भिन्न हो सकता है। उसका संरक्षण तो केवल उन सामूहिक प्रयत्नों से हो सकता है जो राष्ट्रों के बीच विद्यमान भारी असमानता और असंतुलन को दूर कर सकें, एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के प्रभुत्व और शोषण का अंत कर सकें और संसार के समस्त लोगों को बराबरी के आधार पर अवसर और अधिकार प्रदान कर सकें।
तो इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से उस दौर में एक विश्व स्तर पर भारत की छवि को आगे लाने में उनके योगदान को आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। अटल जी जब 1977 में मोरारजी की सरकार में विदेश मंत्री बने थे तो अटल जी उस समय कोई बहुत ज्यादा आयु नहीं थी, 50 के उसमें उनकी आयु रही होगी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। उस समय भी अटल जी के मन में भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध सुधारने का बहुत प्रयास उन्होंने किया था। हिंदी में राष्ट्र संघ में भाषण दिया, ये पहल उन्होंने ही की थी, जिसको बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री के नाते भी उसको निभाया। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो निर्णय उस समय उन्होंने विदेश मंत्री के नाते किया था, चाहे वो आज हमको बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन पासपोर्ट केंद्र उन्होंने हर राज्य में खुलवाए, जो बाद में अब आगे चलकर हम देख रहे हैं कि जेलों तक आ गए हैं। उससे पहले के पासपोर्ट ऑफिस केवल दिल्ली में हुआ करता था, तो ये भी एक उनका योगदान। और भारत की विदेश नीति में एक तटस्थता को बरतना, ताकि हम किसी कैंप में नहीं है, ना हम साम्यवादी कैंप में है, ना हम अमेरिका कैंप में, ये भी विदेश नीति का हिस्सा उनका था। और उस नाते उन्होंने एक, उनकी जो छवि थी वो एक कुशल प्रशासक के तौर पर भी पहली बार उभरी, क्योंकि वो सत्ता में पहली बार 1977 में आए थे, उससे पहले तो जैसे हम बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता ही रहे थे। तो ये जो आगे चलकर जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वही विदेश नीति उनकी प्राथमिकता थी, उसमें फिर वही बात थी कि सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे हों। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा जिस पर शायद हम आगे भी आए, कि कैसे गठबंधन की सरकार चलाई उन्होंने। लेकिन गठबंधन की सरकार जो बनी उसकी एक भूमिका, पृष्ठभूमि का मैं आपको बताना चाहता हूँ। पृष्ठभूमि ये है कि 1967 में देश में पहली बार संबित सरकारें बनी थी, यानी SVD गवर्नमेंट बनी, संयुक्त विधायक दल, पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट प्रदेशों में 1967 में बनी थी। और जिसके जो एक नींव जिन्होंने रखी थी वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उस सरकारों में भी जो एक मिलीजुली सरकार का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो फेल हुआ, लेकिन उसके लगातार 10 साल बाद फिर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो जनता पार्टी की सरकार बनी उनके आंदोलन के बाद, जो इमरजेंसी हटने के बाद, उस समय भी जनता पार्टी में सभी का विलय हो, इसकी भूमिका में भी अटल जी की बहुत बहुत बड़ा योगदान था। और उसी के चलते फिर 10 साल बाद जो NDA बना, तो मैं ये पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूँ कि अटल जी लगातार 67 और फिर 96 में जब ये जनता पार्टी की NDA सरकार बनती है, उसमें लगातार ये एक राजनेता के तौर पर, दूरदर्शी राजनेता के तौर पर उनकी ये जो भूमिका थी, उसने भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, क्योंकि उससे पहले एक ही पार्टी की सरकार इस देश में राज्यों में और केंद्र में रहती थी। तो ये जो एक लगातार यात्रा रही भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की, कि एक पार्टी से हटकर फिर अन्य दल भी सत्ता में आने शुरू हुए, इसमें अटल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही।
रवि जी, आप भी, मैं चाहूंगा इस बात को आगे बढ़ाएं, जैसे उनका जो राजनीतिक व्यक्तित्व था वो व्यापक दृष्टि के साथ राजनीति को देखते थे। जैसे अभी अशोक जी ने जनता पार्टी में विलय की बात की, जिसमें उनकी बड़ी भूमिका थी, और उस वक्त उस समय की मांग को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखते हुए उन्होंने इसको समझते हुए इसमें अपनी बड़ी भूमिका भी निभाई। और दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण उनकी व्यापक राजनीतिक दूरदृष्टि का ये भी दिया जाता है, जब 1996 में सरकार बनी अटल जी की और 13 दिन तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद जो उनका त्याग पत्र था, आज उनकी छवि को ये उनका त्याग पत्र बहुत ऊपर तक ले जाता है। तो जो राजनीति को दूरदृष्टि से देखना और एक अलग तरह से उसको देखना, ये कैसे उनके व्यक्तित्व को एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बनाता है?
देखिए, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता था। अजात शत्रु यानी जिनका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो। तो इस तरह की व्यापक दृष्टिकोण की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने की। 1957 से 1977 तक वे जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे, ये बड़ा कालखंड होता है, और उस समय विपक्ष में बैठने की वजह से जो राजनीतिक रणकौशल उन्होंने अर्जित किया, और वो फिर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके काफी काम आया। अशोक जी ने कहा भी कि विदेश मंत्री के तौर पर जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया, तो वास्तव में भारत का आत्मगौरव, भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, उसका उन्होंने दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया। हम देखते हैं कि बहुत सारे राजनेता जो विदेश के हैं, चीन के, फ्रांस के, वो अपनी भाषा ही बोलते हैं, चाहे किसी भी देश का दौरा करें। ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के किसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर अपनी भाषा के प्रति गौरव और अपनी भाषा के प्रति प्रेम का प्रदर्शन किया विश्व मंच पर। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और भारत में भी उस समय उनके इस हिंदी भाषण का विपक्ष ने भी जमकर तारीफ की थी, इस पर कोई राजनीति नहीं हुई थी। तो उनका व्यापक व्यक्तित्व तो बिल्कुल था, और जिसका परिचय उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी करीब करीब 20 साल तक जो जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे, और जो उनके 3 कार्यकाल रहे, चाहे भले ही 13 दिन का हो, 13 महीने का हो, या 5 साल का पूरा हो। और राजनीतिक कौशल आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, अशोक जी ने भी कहा कि गठबंधन की सरकार, पूर्णकालिक सरकार उन्होंने चलाई, मेरे हिसाब से 80 से ज्यादा मंत्री थे, लेकिन कोई सिर्फ टोवल एकाध दो मुद्दों को छोड़कर पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान नहीं हुई। वो बड़ा इजी, बड़ा आसान कार्यकाल रहा, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े कड़े फैसले भी लिए।
जैसे प्रधानमंत्री ने अपने लेख में एक चर्चा की कि अटल जी ने एक अस्थिर राजनीति को स्थिर करने में बड़ी भूमिका निभाई। अशोक जी, आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा कि जब 1990 के दशक के दौर को हम देखें, तो आप कैसे उनके योगदान को देखेंगे कि जब उनका सफल गठबंधन का 5 साल का कार्यकाल, सभी दलों के साथ मिलकर चलते हुए विकास की परियोजनाओं को लागू करना, सरकार को चलाना, तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने एक अस्थिर राजनीति को स्थिरता दी, वो कैसे उनका एक बड़ा योगदान माना जा सकता है उस दौर में राजनीति की दृष्टि से?
देखिए, 1996 में जब 13 दिन की सरकार बनी, जो बाद में गिर गई, उस समय तक जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको राजनीति में अनटचेबल माना जाता। यदि कोई भी दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलने को तैयार ही नहीं था। उस अनटचेबिलिटी के से लेकर जब 1998 में फिर से वो सरकार बनाई, जो 13 महीने में गिर गई, उसके बाद आप देखिए एक एक करके लगातार कई छोटे बड़े राजनीतिक दल एनडीए के साथ जुड़ते गए। तो जब 99 से 2004 की सरकार बनी, तो उस समय अनटचेबिलिटी समाप्त हो गई थी। अटल जी ने अपने व्यक्तित्व से, अपनी जो सहजता से, इतने दलों का जो एक गठबंधन बनाया, उसको फिर सफलता से चलाकर भी दिखाया। ताज्जुब होगा लोगों को आज ये सुनकर कि उनके मंत्रिमंडल में आज की राजनीति में भी जो धुरंधर नेता हैं, वो उनके मंत्रिमंडल में थे। ममता बनर्जी अटल जी के मंत्रिमंडल में थी, नीतीश कुमार उनके मंत्रिमंडल में थे, उसके बाद शरद यादव उनके, जॉर्ज फर्नांडिस उनके मंत्रिमंडल में थे, नवीन पटनायक उनके मंत्रिमंडल में थे। ये सब लोग अपने अपने राजनीतिक दल में या उनके जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके आज वर्चस्व के नेता हैं। तो ऐसा एक गठबंधन चलाकर उन्होंने दिखाया। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो एक लगा हुआ था टैग अनटचेबल, कोई इसको मिलकर इसके साथ नहीं रहेगा, उसको भी दूर किया। और इसी कारण जो आपने बात कही कि उनके शासन काल में जो भी काम हुए, जैसे सुशासन, गुड गवर्नेंस का मंत्र वहां से ही चला, जिसको आज भी पूरा देश गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मना। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इसी दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी, जो आज भी चल रही है। तो आर्थिक दृष्टि से देख लें, विदेश नीति के तौर पर देख लें, जितने भी और कुछ एक ऐसी परियोजनाएं अटल जी ने जो चलाई उस समय, जो आज की सरकार भी उसको चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भी की थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो नेशनल हाईवेज उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले हैं, ऐसी, और सर्व शिक्षा अभियान जिसके चलते नई शिक्षा नीति मोदी सरकार लाई। तो ये इतने ऐसे इनिशिएटिव थे जिनकी शुरुआत अटल जी के समय हुई और जिसको आज की सरकार और आगे बढ़ा रही है, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भी किया था।
जी, जिस तरह से अशोक जी ने रवि जी चर्चा की कि उनका जो विकास कार्य था 5 वर्षों का, वो एक बहुत बड़ी नींव था भारत के विकास में, और कई योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया। आप कैसे देखते हैं कि उस समय के जो बहुत सारे विकास के कार्य थे वो किस तरह से भारतीय विकास में एक नई नींव डाल रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने सबको साथ लेकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, वो कितना महत्वपूर्ण था?
बहुत महत्वपूर्ण था। केवल देश के विकास की रफ्तार ही उन्होंने तेज नहीं की थी, बल्कि बहुत सारे मोर्चों पर बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे। जिस तरह से कुछ की योजनाओं का जिक्र अशोक जी ने किया, और भी देखें तो मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, बिना जो परमाणु संपन्न ताकतें थी उनकी परवाह किए, प्रतिबंधों की परवाह नहीं की, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। ये दुनिया के सामने भारत की जो ताकत थी उसका एक नया चेहरा दुनिया के सामने रखने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया, प्रधानमंत्री के तौर पर खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 19 फरवरी 1999 में लाहौर बस सेवा शुरू की, खुद भी बस से यात्रा की, और नवाज शरीफ उस समय पाकिस्तान के मुखिया थे तो उनसे भी संबंध सुधारने की कोशिश की। ये बात अलग है कि इसके कुछ समय बाद ही तब के जो सेना प्रमुख थे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ, उनकी शह पर जब करगिल युद्ध शुरू हुआ तो सैनिकों में अदम्य जोश भरने का काम प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और भारत ने वो युद्ध जीता। भारत के चारों कोनों को जोड़ने के लिए ये बड़ी योजना उन्होंने शुरू की थी, जिसे आज की सरकार आगे निश्चित रूप से बढ़ा रही है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। देश में सड़कों का जाल असल में चारों दिशाओं में उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था, जो अब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना का जिक्र हो ही चुका है। 100 साल से ज्यादा पुराना कावेरी जल विवाद उन्होंने सुलझाने का काम किया। सॉफ्टवेयर विकास के लिए, अब आज तो दुनिया डिजिटल मीडिया में तरह तरह के नए नए रोज प्रौद्योगिकियां आ रही हैं, तकनीकी आ रही है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो राजीव गांधी के काल से शुरू हुई, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको रफ्तार देने का काम फिर किया। सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना और प्रौद्योगिक कार्य दल उन्होंने बनाया। राष्ट्रीय राजमार्गों और हवाई अड्डों का विकास शुरू किया। पहली बार देखिए, अंत्योदय के भावना पर, अंत्योदय के विचार पर, विचार को जमीनी हकीकत में उतारते हुए उन्होंने पहली बार उनके नेतृत्व में जनजातीय विकास मंत्रालय बनाया। ये बड़ी बात थी, जो इतने बड़े पैमाने पर जनजातियां हमारे पूरे देश में उत्तर पश्चिम पूर्व चारों दिशाओं में रहती हैं, उनके विकास का ध्यान अगर आया तो पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को आया। और एक अभिनव काम उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर भी किया, विनिवेश मंत्रालय पहली बार बनाया गया। हालांकि उसके पक्ष विपक्ष सारे पहलू होते हैं, आलोचना भी हुई, लेकिन आर्थिक उदारीकरण की जो रफ्तार थी विनिवेश मंत्रालय बनने के बाद उसमें तेजी आई, ये कहना बिल्कुल सही होगा। विदेशी कंपनियों को पहली बार वाजपेयी सरकार ने बीमा कंपनियों को भारत में निवेश के लिए खोला, 26% उनकी हिस्सेदारी को मंजूरी दी गई, जो आज काफी बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराना हो, या भारत के जो अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके उत्थान की, उसके विकास की बात सोचनी हो, आर्थिक तौर पर देश को सशक्त बनाना हो, हर मोर्चे पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने प्रतिमान जो है वो स्थापित किए।
जी अशोक जी, जो पोखरण परमाणु परीक्षणों का अभी रवि जी जिक्र कर रहे थे, उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि उस समय एक बहुत चुनौती भी थी भारत के लिए इन परीक्षणों को करना और अपनी संप्रभुता और शक्ति को और सुरक्षा को बढ़ाने के संदर्भ में वो एक ठोस निर्णय लेते हैं और परमाणु परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया जाता है। भारत पर हालांकि प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी संप्रभुता से हम समझौता नहीं करते हुए उस दौर में इनको पूरा करते हैं। तो उस दौर में अटल जी के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से उन्होंने इन परीक्षणों के जरिए न सिर्फ भारत की सशक्त क्षमता को रखा बल्कि भारत को एक अपनी सुरक्षा को लेकर निर्णय लेने के मामले में सक्षम देश के रूप में प्रस्तुत किया?
देखिए, परमाणु शक्ति बनने के लिए पहले पिछली सरकारों ने भी प्रयास किया था और नरसिम्हा राव जी के समय तो बहुत ही कोशिश की गई थी, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि जो इतने भी परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, विशेष तौर से अमेरिका जो है, वो नहीं चाहते थे कि भारत भी इस ओर बढ़े, और इसलिए जब कभी भी भारत की ओर से प्रयास होता था तो अमेरिका के दबाव में उस प्रयास को ठप कर दिया जाता था। ऐसा सुनने में भी आता है कि जिस दिन अटल जी का 1996 का शपथ ग्रहण समारोह था तो उससे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने उनके हाथ में एक चिट दी थी और उसमें ये लिखा था कि जो काम मैं पूरा नहीं कर सका आप उसको अवश्य पूरा कीजिए, और वो तो 13 दिन की सरकार तो नहीं कर पाई, लेकिन 1998 में जो सरकार बनी तो सबसे पहला काम जो अटल जी ने किया, वो नरसिम्हा राव जी जिस काम को नहीं कर पाए थे वो यही था कि भारत परमाणु परीक्षण करे, और भारत ने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका का पूरा सर्वेलेंस, चाहे वो हम उसको सैटेलाइट से कहें या और तरीके से जिस तरह से भी वो नजर रखते थे, उसको एक तरह से पीछे छोड़ते हुए, उसको धत्ता दिखाते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने जो वो करिश्मा करके दिखाया तो उन्होंने ये परीक्षण किया। लेकिन उसके बाद ये भी मालूम था हमारे पर प्रतिबंध लगेंगे और लगे भी, सभी जितने भी पश्चिमी देश हैं सबने हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगाए, अमेरिका ने लगाए, और उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय भारत की विदेश नीति, क्योंकि हम पहल नहीं करेंगे नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन की जो हमारी पॉलिसी है, ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है, ये डेटरेंट के तौर पर हमने अपने आप को परमाणु परीक्षण या परमाणु शक्ति बनाया है, ये संदेश लेकर दुनिया भर के देशों में जो एक तरह से राजदूत भेजे गए, वरिष्ठ नेता उसमें शामिल थे, और उसमें जो लोग सामने आए उसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल भी थे, नजमा हब्तुल्ला और जितने भी भारत के जो सेवा नेतृत्व हमारे डिप्लोमेट थे, इन सब ने दुनिया के कोने कोने में जाकर भारत का जो पक्ष रखा, और ऐसे में एक जो परिस्थिति को बदला, धीरे धीरे प्रतिबंध हटे, अमेरिका भी फिर भारत से बातचीत करने लगा, तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम भरा कदम था जिसको उठाकर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया, इसलिए कि हमारे पड़ोस में जिस तरह के वातावरण बने हुए हैं, कल को अगर आवश्यकता हो तो ये नहीं हो कि हम इस कारण ही पराजय का मुंह देखना पड़े कि हम परमाणु संपन्न नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक कदम था जिसकी ओर अटल जी ने पहल करके आज भारत उन परमाणु संपन्न देशों की पंक्ति में आकर खड़ा हुआ है।
रवि जी, अगर एक राजनीतिक दल को सक्षम बनाने के उनके नेतृत्व के तौर पर हम अगर बात करें तो जैसे जनसंघ को उन्होंने एक स्थिर दल के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाई, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो अपने एक राजनीतिक दल को सक्षम बनाने की दृष्टि से उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को एक भारत की वैकल्पिक राजनीति में आगे लाने में बड़ी भूमिका निभाई?
देखिए, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहली बार जो संसदीय चुनाव में, आम चुनाव में जो कामयाबी मिली थी तो 2 सांसद ही चुनकर संसद में आए थे, और उसके बाद उत्तरोत्तर विकास करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं, और इसके बाद आप देखिए कि उसके 10 साल बाद ही अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आ जाती है, 2 सांसदों से अपने दम पर बहुमत तक की स्थिति, मजबूत स्थिति आ जाना, इसका मतलब है कि जो नींव डाली गई थी वो सुदृढ़ थी, सही नाप तौल कर डाली गई थी, और जो नींव डालने वाले नेता जनसंघ के रहे उनमें अटल बिहारी वाजपेयी की सर्व स्वीकार्यता पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बड़े नाम, लालकृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नाम भी बीजेपी के उभार में, बीजेपी के विकास में, बीजेपी को आगे लाने में काफी उनका भी नाम था, लेकिन अंततः जब सत्ता की चाबी सौंपने की बारी आई तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को ही सौंपी गई। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक सुदृढ़ नींव डाली जैसा मैंने कहा, और जिसका नतीजा यह रहा कि इतने जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई, तो इसका श्रेय उन्हें बिल्कुल दिया जाना चाहिए।
आपसे भी ये सवाल पूछूंगा कि जैसे भारत में एक वैकल्पिक राजनीति को सामने लाने में, एक दल खड़ा करने में और राजनीति में एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल पैदा करने में उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब कारगिल हुआ तो उस समय अटल जी की सरकार एक मत से सदन में हार चुकी थी और वो एक केयरटेकर सरकार का संचालन कर रहे थे। पूरा कारगिल युद्ध जब लड़ा गया, जो भी निर्णय हुए वो एक केयरटेकर सरकार ने किए थे, जो बात बहुत कम लोग समझेंगे कि आमतौर पर संविधान के अंतर्गत जो केयरटेकर गवर्नमेंट होती है वो अस्थाई सरकार मानी जाती, वो कोई निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन उस समय जो एक देश के ऊपर इस तरह की एक लड़ाई थोपी गई, उसको लड़ने के लिए पूरे देश ने, पूरे विपक्ष ने, पूरे सरकार के तंत्र ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व को माना और जो भी निर्णय लिए गए जिसके चलते हमारी सशस्त्र सेनाओं ने कारगिल की लड़ाई जीती, वो एक केयरटेकर सरकार थी। जो आज अगर हम कल्पना करें तो आज की राजनीति में किसी भी केयरटेकर सरकार को कोई काम भी नहीं करने दे, तो ये भी उनकी एक नेतृत्व कुशलता थी, उनकी जो स्वीकार्यता थी देश में उसका उदाहरण है। अपनी पार्टी के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देश के लिए जो कुछ भी वो कर रहे थे उसमें पूरे देश का उनको समर्थन मिलता था। राष्ट्र निर्माण में हमारा क्या योगदान है, हम विपक्ष में रहकर भी एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, हम सत्ता में आए या ना आए। तो उसी कड़ी में जो एक बहुत ही प्रचलित भाषण अटल जी का है, जिसकी आपने शुरू में चर्चा की कि जब वो एक वोट से उनकी सरकार हारती है तो त्याग पत्र देना राष्ट्रपति को जाने से पहले जो उनका भाषण है उसमें उन्होंने यही बात की कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए।
तो अशोक जी, अपने श्रोताओं को हम उस भाषण का एक अंश भी यहाँ सुनवा देते हैं।
देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
ये जो बात है ये दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान है, और ये उनका भाषण आज भी YouTube पर सबसे ज्यादा बार देखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक संदेश था कि राजनीति केवल सत्ता के लिए नहीं है। राजनीति में सत्ता में आने के बाद ही आप राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, विपक्ष में रहकर भी आप एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। ये संदेश आज की पीढ़ी के जितने भी लोग राजनीति में हैं उनके लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा संदेश है, जिस पर अमल होना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इस पर अनुसरण करना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो आज सत्ता में हो, लेकिन वो एक भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं राष्ट्र निर्माण में।
टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
ये थे अटल जी, जो अपनी कविताओं से भी लोगों को प्रेरित करते थे और अपनी इन रचनाओं से देश आज प्रेरणा ले रहा है, और उनके व्यक्तित्व से, उनके कद से आज राजनीति बहुत कुछ सीख रही है, और आगे आने वाले समय में भी, शताब्दियों में भी, भारतीय राजनीति को जो उन्होंने सिखाया है, राष्ट्र को जो दिया है, वो हमेशा याद रहेगा, और वो जो नींव डालकर गए हैं उनके पदचिन्हों पर राष्ट्र आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। अशोक जी, रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों कार्यक्रम में शामिल हुए और आज इस कार्यक्रम में आपने अपने महत्वपूर्ण विचार सभी श्रोताओं के साथ साझा किए।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।